समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। आज शुक्रवार है, समय हुआ है 7:30 और 32 सेकंड। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस अंक के साथ मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
Namaskar Adab and a very warm welcome to all our listeners and namaskar to Kanak as well. And yes, we welcome you to a very fresh episode of Aaj Savere where we bring you the latest headlines to give you the perfect start of the day. Apart from that, of course, hum janenge kya kuch khas hai aapke apne shahar mein in our Metro News section. And Kanak, jo last section hai hamara jisse listeners ko bada besabri se intezar rehta hai, that what is the events that make this day special? We'll remember the pages of history as well, and those personalities who either have their birth or death anniversaries or their birthdays today. But first, Kanak, let's start with the headline. The Election Commission will today organize a conference with municipal commissioners and selected district election officers from 11 states which had the lowest voter turnout in the last general elections. The conference will be held in New Delhi and will be chaired by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, along with Election Commissioners Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu. The meeting will discuss ways to step up voter turnout in the ensuing Lok Sabha elections. It will prepare targeted and specific action plans to address the issue of low voter turnout in certain urban and rural areas. Municipal commissioners of Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Thane, Nagpur, Patna Sahib, Lucknow and Kanpur, and select district election officers of Bihar and Uttar Pradesh will attend the meeting. The Chief Election Commissioner has on many occasions highlighted the challenge of urban apathy and migration from rural areas as reasons for low participation.
आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों के लिए प्रसारण समय का आवंटन कल नई दिल्ली के रंग भवन में किया गया। प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 45-45 मिनट दिए जाएंगे। 6 राष्ट्रीय पार्टियों को अतिरिक्त 5.5 घंटे के प्रसारण का समय भी दिया गया है। ये प्रसारण इस महीने की 16 और 23 तारीख को तथा अगले महीने की 3, 10, 17, 22 और 29 तारीख को किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। प्रमुख प्रत्याशियों में जनता दल सेक्युलर के एचडी देव कुमार स्वामी, कांग्रेस नेता के केसी वेणुगोपाल और भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने कल नामांकन भरा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर भी इस चरण में मतदान होगा। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में भी इस चरण में मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 26 तारीख को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। जम्मू कश्मीर में शनिवार को पर्चों की जांच की जाएगी।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विल अनाउंस इट्स फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टुडे। The Reserve Bank Governor Shaktikant Das, headed Monetary Policy Committee or MPC, began its 3-day deliberation on Wednesday. The decisions taken at the MPC meeting will be announced today. A total of 6 MPC meetings are scheduled for the fiscal year 2024-25 that began on the 1st of this month. Economists expect that the central bank would once again keep the key interest rate unchanged and focus more on inflation control. The last time the RBI hiked the repo rate to 6.5% in February 2023, and since then it has held the rate at the same level in its last 6 bi-monthly policies.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटनाओं में आरोपी को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। कूचबिहार में चुनावी जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि केवल भाजपा ही महिलाओं पर अत्याचार रोक सकती है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई राशि के बावजूद कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई हैं।
The Indian Coast Guard or ICG Pollution Control Vessel Samudra Pehredar has conducted a joint exercise on marine oil pollution response with the Vietnam Coast Guard at Ho Chi Minh in Vietnam. ICG said during the training, a demonstration of the ship's pollution response equipment was carried out, showing the resolve of the Indian Coast Guard for a shared response of marine pollution in the ASEAN region. During the three-day visit, the ship's crew engaged in professional interactions focusing on marine pollution response, maritime search and rescue, and maritime law enforcement. The activities also included cross-deck training, subject matter expert exchanges, sports events, and passage exercise with the Vietnam Coast Guard. On 2nd of April, ICG ship Samudra Pehredar with an integral helicopter made a port call at Ho Chi Minh, that is in Vietnam, as part of its ongoing overseas deployment to ASEAN countries. Moving on to some international news, Israel's Security Cabinet has approved the reopening of Erez Crossing to allow the flow of more humanitarian aid into Gaza. Erez Crossing, also known as Beit Hanun, is a border crossing between Israel and the northern Gaza Strip. It is being reopened for the first time since the terror attack by the Hamas on the 7th of October last year. The Israeli officials said crossing is being opened to allow more humanitarian aid to enter Gaza. The cabinet also approved using the Israeli port of Ashdod to help transfer more aid to Gaza. Israel tightly controlled land crossings and has banned all travel through air and sea to and from Gaza. Before the start of the conflict, there were two functional crossings within the enclave, Erez for the movement of people and Karam Shalom for the goods movement.
आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल पंजाब किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 200 रन का लक्ष्य 19 ओवर 5 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया। पंजाब के लिए शशांक सिंह ने 29 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाये। और अब बात करते हैं महानगरों के समाचार की। तो सायरा, आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की क्या खबरें हैं?
वेल कनेक्ट, लेट्स स्टार्ट विद हैदराबाद टुडे। इन तेलंगाना द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गॉट ओवर 900 करोड़ रुपीज एज प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम 140 अर्बन लोकल बॉडीज और यूएलबीज एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 1300 करोड़ रुपीज अचीविंग ओवर 70% इन 2023-24। According to officials, the government had fixed a target of 1300 crore rupees from the ULBs, excluding the GHMC. The department could collect over 922 crore rupees, which is 70.92% of the target. The Greater Hyderabad Municipal Corporation, or GHMC, collected 1917 crore rupees in property tax, marking an increase of 257 crore rupees compared to previous year's collection of around 1,660 crore rupees. While the Sirsela municipality tops the list in tax collection with over 99% during the year, Zahirabad municipality is at the bottom with just 34.77% collection as on 31st of March 2024. Moving on to Bengaluru, in Karnataka, 358 candidates have filed 492 nominations for the second phase of polls in 14 Lok Sabha constituencies. Today was the last day to file nominations. Out of total 358 candidates, the majority of 333 candidates were male and just 25 were female candidates. On the last day of filing the nominations, 224 nominations were received from 183 candidates. Among the candidates, BJP has fielded its candidates from 11 seats and its coalition partner JDS from 3 seats in Mandya, Hassan and Kolar. Congress is contesting from all the 14 seats going to pose in this phase. The other parties which have filed their nominations are BSP and CPIM. None of the India Alliance parties have fielded their candidates in this phase against the Congress. And moving on to Chennai, Schwingstarter India recently installed a 1 megawatt solar power system in their global manufacturing hub in Cheyyar. The facility was inaugurated by the company CMG. Through this mode of energy production, the company aims to make the facility carbon neutral in the near future, as the facility can generate 14 lakh kilowatts of electricity and fulfills 20% of its total annual power needs. With Schwing Global Manufacturing Hub having an enormous potential to manufacture 14,000 machines annually, this endeavor reflects on the company's commitment to sustainability. The initiatives are focused on carbon neutrality, energy transition, circularity, and eco-friendly operations. And another news coming in from Chennai, Star Health, an allied insurance company, has tied up with PhonePe to offer comprehensive insurance policies with monthly and annual EMI options. Under the partnership, the payment options are available on the PhonePe app with coverage up to 1 crore rupees. Users can also opt to pay their premium with the UPI auto-pay mandate with a monthly EMI option. Anand Roy, MD and CEO, Star Health Insurance, said that this partnership provides consumers with a hassle-free payment option that is light on the pocket and at the same time meets their wellness needs. So, Kanak, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What do you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
साधारण राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सभी दलों के उम्मीदवार राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह विधोड़ी, चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने नजफगढ़ में प्रचार किया। दिल्ली जल बोर्ड के चंद्रावल वाटर वर्क्स की 900 मिलीमीटर व्यास वाले पाइपलाइन की मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के कुछ क्षेत्रों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इन क्षेत्रों में सिविल लाइन्स कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली पालिका परिषद के क्षेत्र, ओल्ड और न्यू राजेन्द्र नगर, पटेल नगर और दक्षिणी दिल्ली के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के निवासी जरूरत पड़ने पर नजदीकी जल बोर्ड केंद्रों से संपर्क कर पानी के टैंकर मंगवा सकते हैं। महाराष्ट्र में बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ तथा परभणी लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। इन सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा के मौजूदा सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलीकर ने नांदेड़, शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रोफेसर नरेन खेड़कर ने बुलढाणा, शिवसेना शिंदे गुट के बाबूराव कदम कोहलीकर ने हिंगोली सीट के लिए नामांकन भरे। वंचित बहुजन अघाड़ी के पंजाब दख ने परभणी लोकसभा सीट के लिए पर्चा भरा। इससे पहले पार्टी ने बालासाहेब उगले को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। बृहन मुंबई महानगरपालिका बीएमसी द्वारा चलाए गए सघन स्वच्छता अभियान के कारण मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार हुआ है। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 100 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाकों में ये सूचकांक 70 के करीब दर्ज किया गया। कोलकाता से खबर है कि चुनाव आयोग ने कल भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राहुल जे को दक्षिण पश्चिम डिवीजन बेहाला के पुलिस उपायुक्त के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। इससे पहले राहुल डे कोलकाता पुलिस के एसटीएफ के डीसीपी थे। आयोग ने इससे पहले आईपीएस अधिकारी सौम्या रॉय को पद से हटाकर उन्हें ऐसे पद पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी जो चुनाव ड्यूटी से संबंधित न हो। श्री रॉय की पत्नी तृणमूल कांग्रेस की विधायक हैं। आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे। कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों के मौसम का हाल जानने का।
सो लेट्स स्टार्ट विद द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द कैपिटल दिल्ली।
दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
And if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all three cities are expected to have a partly cloudy sky today. And if you talk about Chennai's temperature, well, they will hover between 28 and 35 degrees Celsius. In Bengaluru, the temperature will hover between 22 and 37 degrees Celsius. And in Hyderabad, the temperature will be between 26 and 40 degrees Celsius. So, can we say that the Yes, as we can already see, the temperatures in south, they are already touching 40 degrees. So, let's keep our fingers crossed ke bahut zyada na pade and people should stay hydrated, of course, to combat the heat wave. And now, Kanak, we have to enter that segment of our show in which we remember the special events that happened on this day.
1975 mein aaj hi ke din Saudi Arab ke Raja Faisal ki hatya ki gayi thi.
On this day in 1919, India's first modern shipping company, Scindia Steam Navigation's first ship called Liberty, started its journey. The weight of the ship was 5,940 tons. On this day in 1930, Mahatma Gandhi reached Dandi, a small coastal village in Gujarat, after traveling 385 kilometers with 78 followers to break the imposed salt law. And we all know that the event was called Dandi March and was started from Sabarmati Ashram near Ahmedabad.
2002 mein aaj hi ke din Bharat Myanmar aur Thailand ke beech More Kalawa Mandale sadak pariyojana puri karne ke liye sahmati hui thi.
And on this day in 1979, the first Naval Museum of India was established in Bombay, which is now called Mumbai. And also, Rakesh Sharma, squadron leader, became the first spaceman when he was launched aboard Soyuz T-11 of Soviet Union in 1984. Also on this day in 1993, G.V. Iyer's Sanskrit film Bhagavad Gita was adjudged the best film at the National Film Awards.
2008 में आज ही के दिन इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अनुमोदन समिति ने 1 अरब 4 करोड़ रुपए के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी. पार्वती उम्नाकुट्टन फेमिना मैसेंजर वर्ल्ड बनी. और 2010 में नक्सलियों के सबसे भीषण हमले में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 73 जवानों की मृत्यु हो गई थी. और आज ही सारा राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है. हमारे देश में समुद्री नौवहन का इतिहास बहुत पुराना रहा है. प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत के पूर्वी एशिया पश्चिम में अरब संसार के साथ नौवहन संबंध थे. लेकिन इससे पहले भी हड़प्पा संस्कृति के मेसोपोटामिया, मिस्र और रोमन से नौ परिवहन द्वारा व्यापारिक आदान प्रदान के प्रमाण मिले हैं. जहां वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर महीने के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, वहीं भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है.
Yes, Kanak, and now if you remember some of the personalities, today the first on our list is Kanika Banerjee. Yes, we are remembering her on her death anniversary today. And she was a renowned Rabindra Sangeet singer. And apart from that, she was also trained in classic Rabindra Sangeet and in classical, of course, music. And she was trained at Shanti Niketan. And if we know that Kanika was occasionally referred to as the Ashram Kanya or the girl of the ashram. She was fortunate to take music lessons from none other than Rabindranath Tagore himself. It was Tagore who named her Kanika, and her original name was Anima, also the name of one of his books on poetry. And her other gurus were Dinendranath Tagore, Indira Devi Chaudhrani and Shanti Dev Ghosh. She participated in dance dramas directed by Rabindranath Tagore and toured all over India as a member of his cultural troupe. Kanika Bandyopadhyay joined Sangeet Bhavan as a teacher and in due course became the head of the department of Rabindra Sangeet and later its principal as well. And we have a beautiful rendition in her voice. Let's listen to it.
Gahone nirbhaya
Beautiful voice, Kanak, or Dil Nahi Chah Raha Tha Ki Ruke, isn't it? Kanika had been a regular artist of the Calcutta station of All India Radio, and she also gave performances at the national level in musical programs arranged by other stations as an honored artist. Her gramophone records came out even in the lifetime of Rabindranath Tagore, and there are over 300 gramophone discs to her credit. She was also a singer of bhajans, Nazrul Geeti, and of course, Atul Prasad songs. However, Kanak, the first song that was recorded by her was neither a Tagore song nor a Nazrul Geeti, but it was a Bengali Adhanik song composed by Niharbindu Sen. We have one more song of Kanika. Let's listen to it.
आज गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल की पुण्यतिथि है। उन्हें रणजीतराम पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, नाटक, जीवनी, बच्चों के साहित्य और विविध प्रकार के अन्य लेख लिखे। उनके साहित्य का भारत के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उन्होंने ग्रामीण जीवन के आत्मीय और प्रामाणिक चित्रण के साथ ही लोक भाषा का प्रयोग किया। पन्नालाल पटेल की सर्वोत्कृष्ट 21 कहानियों की चयनिका गोंगे सुर बांसुरी के कथा साहित्य के पाठकों के लिए उपलब्ध है। इन कहानियों में उन्होंने दलित पीड़ित उत्पीड़ित मनुष्य को अपना विषय बनाया है। जीवी पन्नालाल पटेल के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। 5 अप्रैल सन 1989 को अहमदाबाद में पन्नालाल पटेल की मृत्यु हो गई थी।
We are also remembering Pandita Ramabai Saraswati on her death anniversary today. She was a social reformer and the first woman to be awarded the title of Pandita as a Sanskrit scholar and Saraswati after being examined by the faculty of the University of Calcutta. She was one of the 10 women delegates of the Congress session of 1889. During her stay in England in early 1880s, she converted to Christianity. However, after that, she toured extensively in the U.S. to collect funds for destitute Indian women. With the funds raised, she started Sharda Sadan for child widows. And in the late 1890s, she founded Mukti Mission, which was a charity at Khedgaon village, 40 miles east of the city of Pune. The mission was later named Pandita Ramabai Mukti Mission.
आज ईसाई मिशनरी शिक्षक और समाज सुधारक चार्ल्स एंड्रयूज की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी के करीबी मित्रों में से सीएफ एंड्रयूज भी एक थे। सारा शायद वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को मोहन कहकर संबोधित करते थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1871 को इंग्लैंड के न्यूकैसल में हुआ था और वे 1904 में सेंट स्टीफन कॉलेज में शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारत आए थे। ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और जनरल ओडायर के कुकृत्य को जानबूझकर किया गया जघन हत्याकांड बताया था। उनके मित्रों में महात्मा गांधी, बीआर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, टीवी सप्रू और रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल थे। सप्रू, मैं आपको बता दूं सायरा कि एंड्रयूज थे, वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रंग गए थे और अपना परिचय वो एक विदेशी के रूप में नहीं, एक भारतीय के रूप में देते थे और उन्होंने पूरे अंतर्मन से स्वाधीनता संग्राम में भारत का साथ दिया और ब्रिटिश सरकार में अन्यायपूर्ण जातीय राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सीएफ एंड्रयूज के योगदान को देखते हुए सेंट स्टीफन कॉलेज के उनके छात्रों और गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु यानी गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी। 5 अप्रैल को कलकत्ता यात्रा के दौरान 1940 में उनकी मृत्यु हो गई।
We are also remembering Leela Majumdar today on her death anniversary, and we all know that she is a Bengali writer. And well, born to Surama Devi and Pramod Ranjan Ray, she spent her childhood days at Shillong, where she studied at the Loretto Convent. And we all know that she was also the first among Indians to visit Kailash and Mansarovar, and she wrote a travelogue called Himaranya. In 1919, her father was transferred to Calcutta and she joined St. John's Diocesan School, from where she completed her matric examination. She ranked second among the girls in the exams in 1924, and she stood first in English literature, both in her honours, that is in graduation, and also in her Masters of Arts examination at the University of Calcutta. The family she belonged to made a notable contribution towards children's literature. And Sunil Gangopadhyay says that while the Tagore family enthused everybody with drama, songs and literature for adults, the Ray Chaudhary family took charge of laying the foundation of children's literature in Bengali. That was Leela Majumdar. And we're also remembering an actress of yesteryears, Kanak?
Divya Bharati.
Yes. Today we are remembering Divya Bharati, who worked predominantly in Hindi films as well as some Telugu films. She was one of India's highest paid actresses of her time. She was noted for her acting versatility and beauty. She was also the recipient of Filmfare Awards and a Nandi Award. She started her career as a teenager while she was doing pit-up modeling assignments. However, unki aaj death anniversary, and we remember ki unki jo death ki khabar thi, wo it shocked the entire nation.
Unki bahut hi kam umr mein unki asamik mrityu jo keh sakte hain wo ho gayi thi, aur ye शायद अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई.
यस यस इनडीड अ लॉट ऑफ मिस्ट्री दैट स्टिल रिवॉल्व्स अराउंड हर डेथ.
फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली थी. सायरा, तुम्हें याद होगा वो गाना, सुनाते हैं अपने श्रोताओं को. ये गाना था फिल्म विश्वात्मा का, और उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थी शोला और शबनम और दीवाना. ये गाना सुनते हैं फिल्म दीवाना से. आज स्वाधीनता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती है. ये दिवस समता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. आजादी के बाद जो पहली सरकार बनी उसमें उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था. बाबू जगजीवन राम वर्ष 1979 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे.
Today is also the birthday of Sunita Rao, who was a very popular pop singer of the 90s especially. And unka gana Pari Hoon Main Sabko Yaad Hoga, isn't it, Kanak?
श्रोताओं, वक्त हो चुका है आपसे अनुमति लेने का. कनक लता और सारा मुश्तबा को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a great day ahead.
Namaskar.